ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓமிதி ததக்ஷரமுத்கீதம் உபாசீத ஓமிதி ஹ்யுத்காயதி தஸ்ய உபவியாக்யானம். ஓம் இதி ஏதத் அக்ஷரம் உத்கிதம் உபாசித. ஓம் இஹ ஜோ அக்ஷரே அக்ஷரே சப்த ஓம் இத அக்ஷரம் உத்கிதம் உபாசித இஸ்கி உபாசனா கரே. பகிலே சாந்தோக்ய உபனிஷத் கா பிரதம மந்திர வாக்கே ஓம் இத அக்ஷரம் உத்கிதம் உபாசித இஸ்கி உபாசனா கரே. ஓம் சப்த கா அர்த்த ஹே அவதீதி ஓம் அவதி ரக்ஷதி இதி ஓம் अवरक्षण धातु से बनता है. अवते स्टीलोपश्च अवर धातु से मनिन प्रति मन प्रति होता है और टी का लोप हो जाता है. तो अव को अव को जर त्वर सिव्यमी उपधास्य ऊट होकर के ऊ हो जाता है. मक्का मानिन के म के अकार लोप होता है तो ओम बनता है. जो व्याकरण जानते हैं अवते स्टीलोपश्च सूत्र है ओम बनता है अवतिथि ओम. और अ उ म तीन वर्ण उसमें कहा गया उसको बताएंगे. किन्तु ओम इति एतद् अक्षरम ये अक्षर शब्द शब्द को हम किस इंद्र से ग्रहण करते हैं? श्रवण इंद्र से. ओम को चक्षु से ग्रहण कर सकते हैं? जो ध्यान करने के लिए लिपि बनाते हैं ना वो लिपि है. चक्षु इंद्र से ही चिन्ह बनाते हैं ना. जो उसका आंख से हम जो देख लेते हैं ना वो अक्षर नहीं शब्द नहीं है वो तो लिपि है. पुस्तक में जो लिखा है लिपि है. पुस्तक देखकर हम जो पढ़ लेते हैं ना वो अक्षर लिपि है. लिपि से अक्षर का ज्ञान होता है. किंतु अक्षर तो होता है श्रवण करने योग्य. इसलिए जो ओम की उपासना है ओम का ध्यान है लिपि का ध्यान नहीं है किंतु शब्द का. ये बहुत लोग को मालूम नहीं. जहां मेडिटेशन और ध्यान होगा ऐसे ओम कर देते उसे ध्यान करो. वो कोई एक आलंबन है. कोई आपत्ति नहीं. कोई आलंबन उपासना करते एक आलंबन रखकर ध्यान लगाओ. किंतु ओंकार की उपासना ओंकार अक्षर की उपासना ये लिपि का नहीं है. लिपि नहीं है अक्षर. जप करने के लिए अलग है. ओम जप करने के लिए जो अधिकारी है शास्त्र मत के अनुसार जिस मंत्र में जिसका अधिकार वही मंत्र जप करना वो अलग है. ध्यान चिंतन करने के लिए कोई निषेध नहीं. परमात्मा के प्रतीक है और वाचक है. जैसे शालग्राम विष्णु के प्रतीक है. नरभद्र शिव जी का प्रतीक है. मूर्ति आदि बनाते हैं वो प्रतीक है. इसी प्रकार ओम यह अक्षर परमात्मा का प्रतीक है और वाचक है नाम है. सबसे कहा गया निर्दिष्ट नाम समीपस्थ सबसे समीप नाम परमात्मा का ओम. इसे परब्रह्म परमात्मा का नाम रूप रहित है. तो भी भक्त उनको किसी नाम से कहना चाहता है किस रूप से दिखना चाहता है तो नाम रूपी की कल्पना. वेद में भी कुछ शब्द प्रयोग किया गया. शब्द से उपदेश होगा शब्द से ज्ञान होगा. शब्द प्रमाण है. शब्द उच्चारण नहीं करेंगे तो शब्द श्रवण नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा. कहेंगे तो शब्द के द्वारा कुछ ना कुछ शब्द प्रयोग किया जाएगा. तो परमात्मा के लिए जो जो शब्द वेद में है उसमें कोई भी शब्द पारमार्थिक नहीं है. पारमार्थिक तो ब्रह्म है. ब्रह्म से बिना कोई पारमार्थिक है? कोई भी शब्द पारमार्थिक नहीं. एक अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्थिक है. सारे जगत उसमें अध्यक्त शिष्य आचार्य वेद भी. जो वेद है वो पहले नहीं समझ करके वेद का खंडन करना वो अलग है. वेद भी अध्यक्त अध्यक्त तो है किंतु जैसे जगत अध्यक्त सारे सब ब्रह्म लोग ये लोग जैसे अध्यक्त आरोपित है वो ज्ञान होने पर. तो ओम अक्षर भी वास्तव शब्द यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास किसी वाणी का विषय नहीं है. तो भी ओंकार नाम रखा गया. जितने नाम सम नाम में श्रेष्ठ है समीपस्थ ओम नाम वेद में आया. हेत नाम रहित वास्तव नाम नहीं तो भी इस नाम से ओम कहा गया. ये अक्षर ओम अक्षर हो गया शब्द. ओम इस शब्द जो उच्चारण हुआ ये शब्द उच्चारण करके उसमें ब्रह्म दृष्टि करे. जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टि करते हैं ओंकार लिपि में कोई ध्यान करते ऐसा नहीं, ओंकार जो अक्षर शब्द है वही ब्रह्म है, उसमें पर ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करें परमात्मा का चिंतन। तो ओम शब्द में करने के लिए अ उ म तीनों मिल करके, अ हो गया स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था, उसके अभिमानी व्यष्टि विश्व और वैश्वानर समष्टि, ये सब को एक अ में ले लिया। दूसरा है सूक्ष्म में, सारे जागृत स्थूल प्रपंच को आ लय सूक्ष्म में करना, अ के बाद उ आएगा। मांडवी को प्रसन्न पिछले बार हुआ था, उ है सूक्ष्म, सूक्ष्म स्वप्न प्रपंच, सूक्ष्म सर्व अभिमानी, व्यष्टि में तेजस हिरण्य गर्भ, अभिमानी अभिमान विषय सारे सूक्ष्म प्रपंच उ में आ गया। अ के बाद उ करते समय स्थूल प्रपंच सब छोड़ करके सूक्ष्म में आ गया। फिर म जब कहेंगे वो कारण ईश्वर रूप है, उसको प्राज्ञ भी कहते, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का कारण रूप है, उसमें विपरीत ग्रहण नहीं, स्वप्न जागृत नहीं, अज्ञान केवल है, अज्ञान में सारे सूक्ष्म प्रपंच लीन हो गए, केवल माया अज्ञान है, शुद्ध चेतन है। ओम होने के बाद एक बार ओम इस उच्चारण करके दूसरे बार उच्चारण करेंगे तो बीच में थोड़े समय रह जाएगा, एक शब्द उच्चारण के बाद दूसरा शब्द उच्चारण होता है तो बीच में व्यवधान होता है। जैसे हम बोलते हैं जल्दी बोलने पर, आप ही बोलो जल्दी बोलते हैं तो एक वर्ण दूसरा वर्ण के बीच में व्यवधान दिखता नहीं है, वर्ण कहते अक्षर कहते अ क स अ कितने वर्ण आ गया बीच में, बीच में व्यवधान है, रहेगा व्यवधान, व्यवधान के बिना नहीं उच्चारण नहीं हो सकता है, क्यों दिखता नहीं। जिस प्रकार अलाच अगर घुमाते हैं एक बिंदु है, जोर से घुमा तो गोल दिखता है, पंखा घूमने पर दिखता नहीं तो घूमता है, एक बिंदु को घुमाएंगे तो गोल दिखता है, गोल कहाँ है, एक बिंदु है। शीघ्र घूमने से जैसे व्यवधान पता नहीं चलता है, इसी प्रकार व्यवधान होने पर भी पता नहीं चलता है। और सिनेमा चलचित्र में जो चित्र दिखाते हैं उसमें भी इसे बताते हैं जो जानते हैं, अलग अलग चित्र दिखाते हैं किन लगता है कोई चलता है बोलता है दौड़ता है इसे। तो ये व्यवधान जो हो गया बीच में उसको कहते हैं ओंकार में अ उ म तीन मात्रा, आत्मा का तीन पाद होगी विश्व तैजस प्राज्ञ। आगे चतुर्थ है तूर्य कहते, तूर्य चतुर्थ दोनों का अर्थ एक है, चतुर्थ के लिए तूर्य शब्द भी बनता है, चतुरक्षयता वाद्यक्षर रूपच चतुर शब्द से तूर्य बन जाता है, तूर्य का था चतुर्थ, वही हो गया अमात्र। अ उ म में तीन मात्रा चलेगी, चतुर्थ मात्रा का नाम क्या है अमात्र, कोई मात्रा है नहीं, कोई शब्द नहीं अमात्र, किन्तु एक अधिष्ठान है, ये तीनों उसमें अध्यस्त है, अधिष्ठान ब्रह्म है, स्थूल सूक्ष्म कारण जाकर के अंत में कारण रूप है ब्रह्म। तो ये इसे अक्षर इसको उद्गीत कहा गया, इसकी उपासना करने के लिए ओम इति तद अक्षरम उद्गीतम उपासित, पर ब्रह्म का वाचक है नाम है, जिस प्रकार सबके कोई प्रिय नाम लेने से प्रसन्न होता है, इस प्रकार परमात्मा भी प्रसन्न होते प्रिय नाम से। तो प्रिय नाम से इसका अर्थ नहीं कि इसका जप करने के लिए, जप अलग है, जप तो जिस प्रकार जिसका जैसे सामर्थ्य अधिकार है, और शास्त्र मत के अनुसार गुरु दत्त मंत्र ही सबके लिए, जो मंत्र कोई किसका नाम उसमें नहीं कि यह उत्कृष्ट मंत्र है हम ऐसा जप करेंगे अपने आप, ऐसा ठीक नहीं, ये जपने के लिए नहीं, चिंतन उपासना करना ध्यान। उपासना क्या है, जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे मन को लगा करके स्थिर करके रखना, मन को इधर उधर से हटा करके परमात्मा में लगाना, इसको उद्गीत शब्द से कहा। ये उद्गीत है साम के अवयव, साम एक गान करते ऋचा में आरोह करके, साम का विभाग करते हैं, पांच भाग वाले साम, सात भाग वाले साम, आगे इसमें उपासना कहेंगे, उसका नाम अलग अलग है। पांच भक्ति के साम में पहला नाम है हिंकार, प्रथम हिंकार, दूसरा आएगा प्रस्ताव, तृतीय होता है उद्गीत, और चतुर्थ होता है प्रतिहार, पंचम होता है निधनम, इसे नाम इसमें आएगा सब, तृतीय अवयव का नाम हो गया उद्गीत। और कहीं कहीं सप्त भक्ति का कहीं सात भाग वाले, उसमें उद्गीत के पहले और बाद में दो और आ जाएंगे, आदि और उपद्रव। आदि और उपद्रव मिलकर सात हो जाएंगे, शाम का नाम है। अर्थात उद्गीत हो गया शाम का एक भाग, एक अवयव अंश, उसको भक्ति भी कहते, भाग कहते, अंश कहते। उसी उद्गीत नामक शाम के एक अंश में एक ओंकार है, ओंकार भी उसका अवयव हुआ। शाम का पांच भाग में से तृतीय भाग है उद्गीत, उद्गीत के अवयव या अक्षर को भी उद्गीत कह दिया। उद्गीत के अवयव को उद्गीत, ये पट के एक दृश्य जो जल गया कहेंगे पटो दग्ध, पट में इतने कहीं जल गया, कोई पट धूप जलाते समय किसी प्रकार कहीं जल गया, इतना अंश जल गया, कहते पट जल गया, पूरा पट जल गया क्या? थोड़े अंश जलने पर भी कहते पटो दग्ध, एक अवयव नष्ट हुआ तो कहीं पट जल गया। घृत लाया इतने बड़े डब्बा में, एक चम्मच खाया, क्या घृतम भूतम, घी खाया, घी खाया मतलब घी जितने आया था सब खा लिया, इतने लिया तो घी खा लिया, इतने लाया था। ग्रामो दग्ध, गांव है, अग्नि से जल गया, थोड़े कहीं जल गया तो गांव जल गया। एक अवयव होने पर भी अवयवी वाचक शब्द प्रयोग होता है। पट के एक अंश जल गया तो कहते पट जल गया, ग्रामो दग्ध घृतम भुंगतम इसे प्रयोग किया जाता है। तो उद्गीत के एक अवयव ओंकार है, इसलिए ओंकार का ही विशेषण उद्गीत हुआ, ओंकार का ही विशेषण उद्गीत। यहां ब्रह्मसूत्र आएगा, व्याप्तिश्च समंजसम, ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया। सर्व वेद व्यापक है ओंकार, ये ओंकार सारे वेद में व्याप्त रूप से व्याप्त है, उसका विशेषण दे दिया। उद्गीत रूप जो ओंकार उसकी उपासना करे, ओंकार सर्वत्र है, बहुत स्थान में आएगा। यहां जो ओंकार उपासना करते ये उद्गीत रूप जो ओंकार, अर्थात शाम के तृतीय अवयव जो उद्गीत है पांच अवयव में से, उसी अवयव उद्गीत में एक ओंकार है, उसकी उपासना करे। और आगे ओंकार उपासना आएगा, कुछ अवयव के बिना भी ओंकार की उपासना होती है, उपासना करे उद्गीतम उपासित, निरंतर उसका चिंतन ऐसे चिंतन करे। उच्चारण करने के बाद जो सामान्य ओंकार उपासना करते हैं, वो उपासना करने के बाद जो थोड़े बीच में व्यवधान हो जाता है, अमात्र अधिष्ठान रूप ब्रह्म, स्थूल सूक्ष्म कारण सब का लय कर दे, जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण अध्यक्त है, कोई अधिष्ठान रहे तो आरोपित वस्तु की स्थिति होती है। आरोपित वस्तु की निवृत्ति कर देंगे तो सत्य स्वरूप अधिष्ठान है। और जितने शास्त्रार्थ के शास्त्र के द्वारा उपदेश करते हैं, अध्यारोप का अपवाद करना प्रक्रिया है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ब्रह्म को बताने के लिए, शुद्ध ब्रह्म को कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं, उसमें पहले आरोप किया गया, अध्यारोप किया गया। आकाश आदि की सृष्टि पहले कही गई, आकाश आदि सृष्टि करके जगत, पांच भूत की उत्पत्ति, अपंचीकृत भूत से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र प्राण की उत्पत्ति, फिर भूतों का पंचीकरण हुआ, पंचीकरण होकर के स्थूल प्रपंच बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऐसे करते करते अध्यारोप करके सारे जगत, क्योंकि साधक दिखता है सारा जगत दिखता है, और सीधा उपदेश करें तो ब्रह्म जगत है नहीं, ग्रहण कैसे होगा, इसलिए पहले अध्यारोप करके आकाश आदि प्रपंच सब बताया। अध्यारोप अध्यारोप सुनते सुनते दिमाग में आ जाता है इसी क्रम से उत्पत्ति हुई, वस्तु तो उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है, फिर उसका अपवाद करके सबका निषेध करके नेत नेति कह करके सारे वस्तु का निषेध हो जाएगा तो अधिष्ठान स्वरूप रहेगा, अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म है। इसे ज्ञान कराने के लिए ये उपासना शुरू करते हैं। ये उपासना करने के लिए पहले जो कहा ओम उद्गीत, इसको उपास्य क्यों उपासना करना है, उपासना करने के लिए श्रुति स्वयं कहते हैं, क्योंकि ओम को आप प्रारंभ करके सारे मंत्र का प्रारंभ होता है, जितने मंत्र बोलते हैं ओम कहकर आरंभ होता है, कर्म करते प्रारंभ किया जाता है, श्रेष्ठ है। ओम इति ही उद्गायति, ही का अस्मात, क्योंकि ओम ऐसे कह करके उद्गान करते हैं, जो साम वेद का पाठ करते उद्गाता वैदिक कर्म करता है, वेद में वैदिक कर्म करने के लिए किसी यज्ञ में ऋत्विक होते हैं, तीन वेद के तीन ऋत्विक होते हैं। यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम है अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विक का नाम है उद्गाता, और ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम है होता। तीन ऋत्विक हो गए, और एक होता है ब्रह्मा कहते हैं। चार वेद के तीनों वेद के ज्ञाता, वेद चार थे, अथर्ववेद का विभाग बाद में हुआ था करके वेद त्रय भी कहते हैं। तीन वेद के तीन कर्म मंत्र बोलने वाले तीन ऋत्विक हो गए ब्राह्मण, और ये ब्रह्मा होते हैं सारे वेद के ज्ञाता। वो कुछ कर्म नहीं करके साक्षी बनकर बैठते हैं, त्रुटि हो तो बताएंगे, नहीं तो केवल रहते हैं, वो ब्रह्मा होते हैं चतुर्थ, और पत्नी यजमानी से मिलकर कर्म करते हैं। तो ये उद्गान जब करेंगे, शाम गान करेंगे, पहले ओम कहकर प्रारंभ किया जाता है, इस ओम यह श्रेष्ठ है, उसकी उपासना करें, ओम की उपासना। तस्य उपव्याख्यानम, और जो ओंकार उपासना करेंगे उपव्याख्यानम, अक्षर का व्याख्यान क्या है, कैसे उपासना करना है, और क्या उसका गुण है, किस गुण को चिंतन करेंगे। उपासना सगुण उपासना करता है, करते तो गुण चिंतन करना पड़ता है, गुण का चिंतन करके सगुण की उपासना होती है। जब निर्गुण चिंतन करें तो गुण का निराकरण करेंगे, कोई गुण नहीं, गुण का निराकरण, यहां तो अभी सगुण चिंतन है, यहां गुण कथन कैसे कैसे गुण इसमें, और क्या उसका फल, तस्य उपव्याख्यानम प्रवर्तते, व्याख्यान आरंभ हो रहा है। अर्थात क्या कैसे उपासना करना कहेंगे, उपासना में क्या क्या गुण चिंतन करना है, और फल क्या है कहेंगे। अभी केवल वाक्य है, इसका उपव्याख्यान मतलब ऐसे उपासना करना है, एवं उपासनम, इसका ऐसे ही स्वरूप, ऐसा ही फल, उसका कथन, उपव्याख्यानम कथन, समीप कथन, उसका कथन करते कैसे उपासना करना चाहिए, उपासना में क्या गुण चिंतन करना चाहिए, किस गुण चिंतन करने से कैसे फल मिलेगा, अब कहेंगे उपव्याख्यानम। इसमें तीन प्रकार है गुण कहेंगे, रसतम, आप्ति और समृद्धि, ऐसे कहेंगे। फल भी बताएंगे, तीनों का अर्थ बताएंगे। पहले रसतम, रसत सारे रस कहते, रसतम सबसे उत्कृष्ट रस सारतम है, ये बताने के लिए पहले रसतम गुण कैसे बताने के लिए प्रारंभ कहते करते। एषां भूतानां पृथ्वी रस, पृथिव्या आपो रस, अपाम औषधव्यो रस, औषधीनां पुरुषो रस, पुरुषस्य वाग् रसो, वाच ऋग्रस, ऋच सामरस, सामन उद्गीतो रस। ये रस कहा गया, उद्गीत को रस कहा गया। एषां भूतानां पृथ्वी रस, पृथ्वी हो गया सार भूतानां, भूत शब्द से चराचर सब को लेना, सावर जंगम पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि अचर जितने है, वृक्ष हो पर्वत हो, जितने सारे पदार्थ सबका रस है पृथ्वी। यहां रस का तो सार उत्पत्ति स्थिति लय हेतु, पृथ्वी से सब पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में स्थित है, अंत में पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। पशु पक्षी मनुष्य शरीर बनता है, भौतिक शरीर पृथ्वी से उत्पन्न होगा, फिर पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी में लीन हो जाएगा। सारे पदार्थ सब पृथ्वी से उत्पन्न है, पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी में लीन होते, पृथ्वी हो गया रस। जब प्रलय होता है, पहले सारे पदार्थ पृथ्वी में मिल जाएंगे, पृथ्वी फिर जल में लीन हो जाएगी, फिर जल पे अग्नि, इसी क्रम से प्रलय होता है, सारे पृथ्वी भूतों के पृथ्वी हो गया रस। रस शब्द से गति परायण, उत्पत्ति स्थिति लय कारण, उससे उत्पत्ति, उसमें स्थिति, उसमें लीन होता है। अब पृथ्वी का रस हो गया पृथ्वी आपो रस, पृथ्वी का रस सार हो गया जल, क्योंकि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, कारण में कार्य की स्थिति होती है, जब तक घट है मिट्टी में स्थित है, इसलिए जल में स्थित है पृथ्वी, और पृथ्वी का लय भी जल में होता है, जल हो गया रस। अपाम औषधव रस, और जल का रस हो गया औषधि, यहां केवल उसका जल का परिणाम, ब्रीयवादी है सार रस, औषधि शब्द से ब्रीयवादी दान आदि होते हैं, धान ब्रीही धान यव आदि गेहूं आदि ये सब जल का रस हुआ, उसे जल का परिणाम होकर रस हुआ। उसी रस अन्न खा करके रस होने पर शरीर बनता है, औषधि नाम पुरुष रस। ये जल से उत्पन्न हुआ ब्रीह धान यव गेहूं आदि मूंग आदि उसको खा करके पुरुष रस हो गया, पुरुष शरीर बना, पुरुष हो गया श्रेष्ठ। पुरुष से वाग रस, पुरुष में जितने सब है सब में श्रेष्ठ हो गया वाग। वाग इंद्र के द्वारा शब्द उत्पन्न होता है, वाणी शब्द, बाकी सब ग्रहण करने के चक्षु प्रधान है, किंतु वाणी के द्वारा ही पुरुष की महत्ता की सिद्धि होती है। वाणी के द्वारा गान करने वाले भी, समाधि वेद गान करने के लिए किसी उपदेश करने वाले शब्द के द्वारा है। वाग हो गया रस, वाच रीग रस, वाणी में जितने हैं सब वाणी शब्द है, सब में श्रेष्ठ होता है ऋचा, ऋख मंत्र, श्लोकात्म मंत्र है ऋख, ऋग है मंत्र, वेद का नाम भी है ऋग यजु साम, वेद का नाम है और मंत्र का भी नाम है। ऋग वेद में यजुरूप मंत्र भी है, साम भी है, साम वेद में ऋग भी है, यजुर भी है मंत्र। एक वेद का नाम और एक मंत्र का नाम। ऋग वेद में श्लोक भी है, गद्य भी है, साम भी है। साम वेद में श्लोक भी है, साम मंत्र है, गद्य भी है। जो श्लोकात्मक मंत्र उसको कहते ऋचा, ऋक कहते हैं। जो गद्यात्मक मंत्र उसको कहते यजुर, यजु। और साम होता है श्लोक में आरूढ़ करके गान किया जाता है, गीत विशेष है साम। ऋचा श्लोकात्मक है, नियत पाद अवसान, निश्चय नियत अक्षर पाद अवसान, निश्चित अक्षर में पाद समाप्त हो श्लोक हो जाएगा, ये ऋचा है। जहां इसे पाद नियत नहीं है गद्यात्मक हो जाता है उसको कहते यजु। जैसे अभी ओम इतद अक्षर उद्गीतम उपासित, ओम इति उद्गायित, ये जो आया उद्गायति, ये सब यज मंत्र है। सामवेद के अंतर्गत मंत्र ये यजुरूप मंत्र। तो जितने वाणी में श्रेष्ठ हो गया ऋक ऋचा श्लोकात्मक मंत्र श्रेष्ठ हुआ। और ऋच सामरस, ऋचा में आरूढ़ करके साम को, साम गान गीत विशेष है, श्लोक बोलते समय उसमें जो लंबा का ऐसे करके लंबा करते गान करने वाले कितने कितने, कहीं कहीं जहां जितने विधान किया गया कहीं इतने लंबा करते लंबा करते रहते हैं ये साम। वही मंत्र का यदि सुंदर साम के युक्त कर गान करेंगे तो श्रवण से भी अंतकोण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुनने वाला लगता है। ये जो वेद मंत्र साम आदि आरूढ़ कर बोलते हैं, मंत्र के गान करने से अंतकोण शुद्ध होता है, श्रवण से भी होता है, तो कभी पुराण नहीं होता है। जितना अच्छा प्रिय संगीत नए है बहुत लोग सुनते हैं, बाद में पुराना आगे छोड़ देते हैं, फिर नया आया बहुत दिन के बाद कोई भूल गया बहुत पुराना आया तो भी अच्छा लगेगा, नहीं तो थक जाते हैं। गीता पाठ में कौन थक जाता है, गीता पाठ करने वाले रोज पाठ करते हैं, जितने बार पाठ करें उसमें कोई आख्यायिका है, नाचना कूदना कुछ है कुछ नहीं। किंतु गीता एक विदेशी मिला था संगीतज्ञ अमेरिका का, यहां रह करके विभिन्न पंडितों से गीता का पाठ कितने प्रकार किया जा सकता है उसी का हमारे पास ला करके, उस समय ये टेप रिकॉर्डर था, रिकॉर्ड करता था, हमको भी सुनाया, वो बताया मेरा मैं एक अच्छा हिंदी भाषा सीखा, हिंदी से बोलता है, हम बहुत दिन रह करके बोलते समय इंग्लिश शब्द आ जाता है तो नहीं बोलता है, कहता मैं क्या हूं कुछ नहीं बताता हूं, ऐसे कह करके हिंदी बोलता है। तो मैं संगीतज्ञ हूं और उसके मन में आया गीता जैसे संगीत कोई है ही नहीं दूसरा, इसलिए गीता के ऊपर मैं कर रहा हूं करके बहुत दिन से लगा, बहुत संगीत में वहां अमेरिका में बहुत बड़ा संगीतज्ञ था वो, यहां सीख से करके एक बार यहां दिल्ली में गीता के ऊपर 50 प्रकार गीता का पाठ किया जा सकता है किया था उसने। तो उसने क्या था कि बाद में हमको पता चला, पाठ जो करते हैं ना श्लोक, श्लोक पाठ करने में कुछ नियम है, उच्चारण में तो बहुत लोग गलती ही करते हैं, उच्चारण सीखा वो जैसे सीखा इतने लोगों से सीखा है, कुछ हमसे भी सीखा, कुछ उच्चारण में कहां कहां गलती होती है। बहुत लोग गलत करते हैं, गलत स्वयं बोलने में प्रथम अर्ध कैसे बोलना, उत्तरार्ध कैसे बोलना, इस क्रम से ये भी है। गीता पाठ करते हैं ना, पूर्वाध उत्तरार्ध पता नहीं चलता कौन पूर्वाध कौन उत्तरार्ध, सब एक जैसे हो जाता है, उसके बोलने में भी है। संगीत के और कई बोलते, कभी संगीत थोड़ा ज्यादा ठीक जानने वाले बोलेंगे और कुछ लोग ज्यादा संगीत को लेकर के बिगाड़ देते हैं, किंतु वो संगीतज्ञ है वो पकड़ता है, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं है करके बहुत सुंदर पाठ करते हैं। तो गीता मतलब इतने पाठ कर इतने खुश होता है, तो गीता के मतलब बहुत संगीतज्ञ होकर के बड़े विख्यात होकर के उसने चुना गीता को, और गीता पे प्रसिद्ध है। जैसे प्राचीन वेद मंत्र भी इस प्रकार है, वेद मंत्र ठीक से आजकल पंडित लोग जब बहुत में वेद के जो उच्चारण होना चाहिए वो नहीं जानते, उदात अनुदात स्वरित उच्चारण से होना चाहिए, ये तो उच्चारण करना कठिन हो गया। हस्त में भी दिखाना जो होता है उदात अनुदात स्वरित, ये लोग क्या करते खाली हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा पांच ब्राह्मण पाठ करते समय देखो कोई इधर करता है तो कोई इधर करता है, कोई इधर करता है, जल्दी सबको मालूम है एक तरफ होना चाहिए ना, सब इधर करते सब ऐसे करें, ऊपर करते सबका ऊपर हो, देखो किसका ऊपर है तो किसका नीचे किसके ईसा है, और आप उनके ऊपर देखो और दिखाते हम कहते हैं गणा नाम तम गणपति गुम, ये ऐसा कभी ऐसा चार तरफ करते ऐसा खाली आसन नहीं है, किस समय कहाँ लेना है नियम। तीन पांच ब्राह्मण पाठ करते देखो आप हाथ कहाँ एक तरफ होता है क्या, इसे मालूम होता है किसी को मालूम नहीं, खाली हाथ ही लाना ही लाने कोई भी ला दिया पाठ है ठीक पाठ, और पांच दस पाठ वर्ण करेंगे एक स्वर से पाठ, ये भी है। ये शांति मंत्र के समय पाठ के समय भी थोड़ा ध्यान देना, एक साथ पाठ हो, एक साथ पाठ करने के लिए एक कुछ करना पड़ता है, जैसे सब चलना है, चलने के लिए क्या होता है पहले धीरे धीरे चलो सबको साथ लेकर के, हमको सामर्थ्य दौड़ने के लिए आगे चल जाएंगे तो नहीं होगा साथ नहीं चल पाएंगे, इसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ले करके बीच में थोड़े अवसर देते हैं मिलकर ही चलने के लिए, और सबके साथ मिलकर पाठ करें, इसे शांति पाठ जो करेंगे। पुस्तक तो अभी विशाल नहीं लाए, पिछले साल दिए थे शांति पाठ, अच्छा तो शांति पाठ पुस्तक रहे तो पाठ के साथ मिलकर करें तो अभ्यास हो जाता है, जितेंद्रिय सुंदर अभ्यास हो जाएगा, तो पाठ मिलकर करने से शांति पाठ। अभी पिछले साल यही आप लोगों ने ही कहा था, बोले ऐसे हुआ था रोज पाठ हो आगे भी चले ऐसे कितना अच्छा लगता है, मैं कहा था एक दिन करेंगे आगे करेंगे नहीं, असौ ने कहा नहीं नहीं रोज शांति पाठ दस पाठ दस शांति मंत्र पाठ होता है, कला समय तो आरंभ में और अंत में, तो ज्ञान यज्ञ में हमारा शाम को होगा, शाम में अंत में करते हैं तो दस शांति मंत्र पाठ। तो ये पाठ करते समय ये पाठ केवल पाठ नहीं, पाठ है उसके साथ भगवान ईश्वर की प्रार्थना, शांति के लिए विघ्न निवृत्ति के देवताओं की प्रार्थना, प्रार्थना ऐसे करना है मन से करना है पाठ भी करना, कुछ तो होता है मन से केवल ध्यान प्रार्थना करते हैं, कुछ श्लोक बोलकर प्रार्थना करते हैं, तो उसे पाठ भी करे प्रार्थना भी करे, खाली पाठ नहीं पाठ के साथ साथ प्रार्थना। तो पाठ करते करते थोड़ा अर्थ समझे नहीं कुछ समझे तो वे परमात्मा का मैं ध्यान परमात्मा की स्तुति कर रहा हूं इतने तो समझ कर पाठ करे, पति पद अर्थ भी उसमें समझ रहे तो अच्छी बात है, जहां जहां समझ आए नहीं भी समझे तो परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं परमात्मा का स्तोत्र है इसमें आएगा। जो साम गान करते हैं कहते ही परमात्मा का ही गान करते हैं, जो गान करने वाले धनी होते हैं, क्यों धनी होते हैं कि परमात्मा की स्तुति करते हैं, गान स्तुति नमस्कार तो परमात्मा का ही होता है, नमस्कार किसको होता है परमात्मा का ही नमस्कार, गुरुजन को नमस्कार करते बड़ों को नमस्कार करते साधु ब्राह्मण को नमस्कार करते किस बुद्धि से करना है परमात्मा दृष्टिया फल परमात्मा ही देते है। महात्मा में तो प्रसिद्ध है क्या नमस्कार करते नमो नारायणाय, महात्मा नमस्कार करते नारायण को नमस्कार, तो आप नारायण स्वरूप करके नारायण दृष्टिया नमस्कार, तो परमात्मा दृष्टिया नमस्कार करे पुत्र भी पिता को पत्नी भी पति को छोटे भाई बड़े भाई को जितने ज्येष्ठ कोई प्रणाम करते हैं, तो इसी बुद्धि से परमात्मा बुद्धिया प्रणाम करना चाहिए। परमात्मा कहा नहीं बताओ, तो गुरुजन में भी है जहां प्रणाम करते परमात्मा बुद्धिया प्रणाम करने से परमात्मा फल देते भाव कितने चिंतन, और वो यदि उसमें ऊपर ऊपर से केवल शब्द से नहीं प्रमाद से नहीं परमात्मा करना तो होता है, उसको थोड़ा परमात्मा बुद्धि से करने से परमात्मा मिल जाता है। अब किसी को यदि प्रणाम कर लिया, अपनी कोई कमती नहीं होती, कमती नहीं होती, अभिमान को समाप्त करना है, परमात्मा की प्रार्थना है, परमात्मा का ही नमस्कार होता है, नमस्कार करते समय समझे परमात्मा को होता है। और आपको कोई नमस्कार करता है तो उस समय भी आप परमात्मा से प्रार्थना करो, वो भी सच नमस्कार करता है, परमात्मा को नमस्कार करता है, अपने ही परमात्मा का ध्यान करें। हमको कोई नमस्कार करने से बड़ा हो जाएंगे, अर्थात दूसरे को प्रणाम करेंगे तो छोटा हो जाएगी, ये भावना छोड़ना है। एक परमात्मा स्वरूप में बड़ा छोटा क्या विचार करना, मर्यादा है ज्येष्ठ को कनिष्ठ प्रणाम करे, सम्मान करे। और अनादिकाल से जीव सब है, कौन ज्येष्ठ है कौन कनिष्ठ है बताओ, कौन जीव? आप लोग को सत्ययुग में कोई थे बताओ? सत्ययुग में त्रेतायुग में कई थे, अभी अभी आए,